Good morning, brothers and sisters.
Good morning, bhaiyo aur behno.
It's nice to be back together again.
बहुत अच्छा लगता है कि जब हम वापस और एक बार साथ में मिलते हैं.
How many of you are happy to have this combined meeting?
और कितने लोग यहाँ पर खुश हैं इस combined meeting के लिए वजह से?
Yeah, we all look forward to that combined meeting because we want to meet our brothers and sisters from Khargar.
क्योंकि
खारगर ब्रदर एंड सिस्टर वांट टू मीट कांदिवली
और इस कंबाइंड मीटिंग में एक दूसरे भाइयों से मिलते हैं कांदिवली और खारगर एक साथ में मिल पाते हैं.
सो जस्ट शेयर द वर्ड, जस्ट हैव अ वर्ड ऑफ प्रेयर.
और वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे.
फादर इन हेवन, वी जस्ट गिव यू प्रेज एंड थैंक्स. यू आर वर्दी ऑफ ऑल आवर प्रेज लॉर्ड.
स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप ही हमारी स्तुति और आराधना की योग्य है.
वी थैंक यू लॉर्ड दैट योर वर्ड इज द ट्रूथ.
हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि प्रभु आपका वचन सत्य है.
The word says, you shall know the truth and the truth shall make you free.
प्रभु आपका वचन कहता है आप सत्य को जानोगे, सत्य आपको आजाद करेगा.
Your word is so powerful, Lord.
प्रभु आपका वचन इतना सामर्थ्य है.
Your word is so refreshing.
प्रभु आपका वचन इतना ताजगी देने वाला
है. Your word is so uplifting.
प्रभु आपका वचन हमको ऊंचा करने वाला, उठाने वाला है.
We pray that we would experience these things, Lord, in today in our midst of us.
प्रभु आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे मध्य में इन सारी बातों को हम अनुभव कर सके.
Holy Spirit, move in amongst each one of us.
पवित्र आत्मा हम सबों के अंदर प्रभु आप कार्य करें.
That every heart would be nourished.
प्रभु ताकि हर एक प्रभु हृदय जो है वो पोषित किया जाए.
And strengthen in the inner man.
प्रभु उनके भीतरी मनुष्यत्व में प्रभु सामर्थ्य और बल को प्राप्त करें.
It's not by might, not by power, but only by your Spirit, Lord.
प्रभु न ताकत से न बल से पर आपकी आत्मा के द्वारा केवल.
So we look to you and we trust you, Lord.
प्रभु हम आपकी ओर देखते हैं, प्रभु हम आपके लिए प्यासे हैं.
Amen.
Amen.
Well, sisters, I want to share something which has been a challenge to my own life.
और भाई और बहनें, मैं आपको कुछ आज बांटना चाहता हूँ जो व्यक्तिगत रूप से मुझे चुनौती दिया है.
And I want to encourage you and encourage myself.
और जैसे मैं इस चीज को बांटता हूँ, मैं आप लोगों को और अपने आप को प्रोत्साहित करना चाहता हूँ.
We'll read from Genesis chapter 3.
उत्पत्ति उसका तीसरा अध्याय.
वर्स 11, 12 एंड 13.
11, 12 और 13 वचन.
हियर गॉड आस्क्स एडम एंड ईव आफ्टर दे हैव डिसओबेड हिम. गॉड ट्राइज टू सीक देम एंड ही गोज आफ्टर देम एंड ही Ask them something.
और जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तब परमेश्वर उनको ढूंढते हुए उनको इस प्रश्न को पूछता है.
So in 11 he says, who told you that you were naked?
और उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है?
Have you eaten from the tree which I commanded you not to eat?
और जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है?
And listen to the response of both Adam and Eve.
और आदम और हवा दोनों के प्रत्युत्तर को यहां पर हम देखें.
Verse 12 says,
बारावचन.
The man said, the woman whom thou gavest to me, she gave me from the tree and I ate.
और आदम ने कहा कि जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया.
Then God asked the woman,
फिर परमेश्वर ने स्त्री को पूछा,
What is this you have done? And the woman said, The serpent deceived me and I ate.
और स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझको बहका दिया तब मैंने खाया.
So God asked a question and they answered.
परमेश्वर ने उनको एक प्रश्न पूछा और उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर दिया.
So was it the right answer that they gave?
और क्या यह सही उत्तर था जो उन्होंने परमेश्वर को दिया?
Yes, they said the truth.
यहां वो सही उत्तर, उन्होंने सत्य कहा.
But what do we find in that answer?
लेकिन वो उत्तर के अंदर हम क्या पाते हैं?
Can anybody say, just say?
कोई बता सकता है?
Some blame. Well, Manish says blame.
और एक दूसरे के पास आक्षेप या दोष लगाना.
So Adam was saying that my wife did it.
और आदम कहता है कि जो पत्नी जो मेरी है उसने मुझे वो दिया.
And the wife said the serpent.
और हवा ने कहा कि वो सर्प ने मुझे दिया.
So it was not a straightforward answer. It was like that. It was a truth, but it was somebody to blame.
उन्होंने सत्य ही कहा, लेकिन उन्होंने एक के ऊपर एक के दोष लगाते उस प्रकार उत्तर दिया.
We are all children of Adam and Eve.
और हम सब उस आदम के ही संतान हैं.
Whenever something we are confronted with, we feel like blaming it on somebody.
और जब कभी कोई ऐसा सामना हम करते हैं, तो हम औरों को दोष लगाने के लिए आरंभ कर देते हैं.
So that is the nature within us to blame others.
और ये स्वभाव हमारे अंदर होता है कि हम औरों के ऊपर दोष लगाए या आरोप लगाए.
And that blaming others does not solve any problem.
और इस प्रकार से किसी ऊपर दोष लगाना किसी समस्या के उत्तर नहीं लाता है.
It further complicates matters.
लेकिन और भी चीजों को जटिल बना देता है.
So now, is there a solution for this?
इसके लिए क्या कोई उत्तर है?
Yes, I found it in 1 Samuel chapter 25.
पहला सामुएल 25 अध्याय में इसका हम समाधान देखते हैं.
The story of Abigail.
अबिगेल की कहानी से.
1 Samuel 25.
पहला सामुएल उसका 25
अध्याय. The whole chapter is about an amazing woman called Abigail.
और यहाँ पर एक अद्भुत स्त्री जिसका नाम अबिगेल है उसके बारे में लिखा है.
A very rare quality displayed by her.
और बहुत ही एक न दिखने वाले ऐसे बहुत ही कम दिखने वाले ऐसे गुणों को यहाँ दिखा रही है.
This quality we don't find in any other there are many other great women of God who but here in the what is recorded is only about Abigail.
और वचन के अंदर बहुत सारी ऐसी महान स्त्रियों का वर्णन है लेकिन अबिगेल के अंदर कुछ खास गुणों का वर्णन वचन के द्वारा किया गया है.
जस्ट टू मेक द स्टोरी शॉर्ट एंड सो वी डोंट हैव टाइम आई विल जस्ट टेल यू द स्टोरी.
हमारे पास समय की कमी है इस कहानी को छोटे संक्षिप्त में बताऊंगा.
सो चिल्ड्रन एंड यंग पीपल स्टोरी इज देयर नाउ.
और ये बच्चे और ये जवानों की ये कहानी आप जानते हैं इसे.
सो स्टोरी मे बी मोर इंटरेस्टिंग राइट.
और कहानी आपके लिए बहुत ही ये इंटरेस्टिंग होगा.
ओके. सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अबिगेल दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डेविड. When David was not yet king, he was supposed to be king, but Saul was after his life. That is the time the story is.
और ये कहानी तब के समय पे है जब दाऊद राजा नहीं बना था, बनने वाला था, और तब ये उसके समय की अबीगल की कहानी है.
David killed Goliath, and he was very famous as such.
और बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति था दाऊद ने गोलियात को मारा.
I think all over Israel, everybody knew about David.
इस्राएल में सब कोई दाऊद के बारे में जानता था.
Because a person killing a giant, we ourselves. Everybody knows about David. So during that time, everybody knew about David.
और क्योंकि इसने एक बहुत ही बड़े एक महान दानव को जैसे एक व्यक्ति को मारा गोलियात को हर कोई व्यक्ति गोलियात के दाऊद के बारे में जानता
था. But he was running away from King Saul who was after his life.
लेकिन ये दाऊद जो है राजा शाउल से भाग रहा था क्योंकि राजा शाउल उसके प्राण के पीछे था.
So he had a group of people around 400-600 or whatever number. He had a group of young men with him.
और बहुत एक 400-500 जवानों का एक समूह झुंड उसके साथ में था.
एंड दे वर कैंपिंग इन अ विल्डरनेस प्रोबब्ली इट्स अ वेरी ड्राई प्लेस.
और जंगल में एक सूखे प्रदेश के अंदर वो अपने अपनी जगह को बनाए हुए थे.
एंड दैट टाइम दे हर्ड दे न्यू अबाउट वन मैन कॉल्ड नेबाल.
और तब उन्होंने नाबाल नाम के एक व्यक्ति के बारे में सुना.
ही वाज अ वेरी रिच मैन.
बहुत ही धनवान व्यक्ति वो था.
ही हैड सम 3000 शीप 3000 गोट्स.
और 3000 भेड़ और बकरियां थी उसके पास.
ड्यूरिंग दोज डेज व्हेन यू हैव मोर कैटल यू आर कंसीडर्ड एज रिच.
और जब उन दिनों के अंदर बहुत जानवर आपके पास अगर है तो आप बहुत धनवान माने जाते थे.
सो ही बट हिज नेचर वॉज ही वॉज वेरी हार्श मैन.
लेकिन उसका जो स्वभाव था वो बहुत ही कठोर हृदय का व्यक्ति था.
एंड ही वॉज वेरी ईविल इन हिज डीलिंग्स.
और अपने व्यवहारों के अंदर वो बड़ा बुरा व्यक्ति वो था.
इट सेज दैट नो मैन कुड टॉक टू हिम.
ऐसा लिखा है कि कोई भी व्यक्ति उससे बात नहीं कर पाता था.
सच टाइप ऑफ पीपल समटाइम्स वी आल्सो फेस सम वेरी डिफिकल्ट टू टॉक टू सच पीपल.
और कई बार हमारे जिन में भी ऐसे व्यक्तियों का सामना करते कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है उनसे बात या व्यवहार करना.
हिज नेम वॉज नेबाल.
उसका नाम नाबाल है.
एंड द मीनिंग ऑफ द नेबाल इज फूल.
और नाबाल का जो अर्थ है उसका मतलब मूर्ख है.
एंड ही वॉज लाइक अ फूलिश पर्सन ऑल्सो.
और वो एक मूर्ख व्यक्ति के समान ही था.
सो लेट अस नॉट नेम आवर चिल्ड्रन सम बैड नेम्स.
इसलिए हमारे बच्चों का नाम ऐसे बुरा नाम न रखे.
His, he had a wife called Abigail.
उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम अबिगेल था.
एंड शी वॉज इंटेलिजेंट.
और बहुत ही बुद्धिमान थी.
एंड शी वॉज ब्यूटिफुल ऑल्सो.
और वो सुंदर भी थी.
सो दिस वॉज सो एंड नेबाल वॉज डूइंग सम वर्क शेयरिंग अ शीप. एट दैट टाइम डेविड थॉट लेट अस गेट सम ही इज सच अ रिच मैन लेट अस आई विल सेंड माय यंग मैन एंड get something for us, you know, like some let him give some good gifts for us. So he told his young men to speak very politely to this Nabal.
और नाबाल एक धनवान व्यक्ति था. अपने भेड़ों की ऊन कतरने के समय पर दाऊद ने एक झुंड को उसके पास भेजने को समझा कि उसके पास जाकर कुछ अपने आप के लिए अपने झुंड के लिए कुछ मांगे. और अपने झुंड से उसने कहा कि बहुत ही अच्छे तरीके से उससे बात करना बर्ताव करना.
So this young man of David went to Nabal and said and very politely they respectfully they spoke to him. And said that whatever you have, you can give it to us.
और ये जवान जो दाऊद के व्यक्ति थे, वो नाबाल के पास बड़े बहुत सभ्यता से वर्तन करके उनसे कहते हैं कि जो कुछ तेरे पास देने को है, हमारे लिए आप दे सकते हैं.
And because David has sent us.
और वो कहते हैं कि दाऊद ने हमें भेजा है.
What Nabal said is.
और नाबाल ने कहा.
David, who is David?
वो कहते हैं दाऊद कौन है?
एंड यू वॉन्ट माई फूड एंड माई वॉटर एंड माई मीट?
और वो कहते हैं कि मेरा जो भोजन है, मेरा जो मांस, मेरा जो पानी, वो आप चाहते हैं?
विच इज मेन फॉर माई पीपल, यू वॉन्ट इट?
और जो मेरे लोगों के लिए है, क्या वो आप चाहते हैं?
Refused and he insulted them.
और वो इनकार करता है, उनका अपमान करके निकाल देता है.
So these young men went and told David about it.
और ये जवान वापस जाकर दाऊद को इस प्रकार कहते हैं.
This is what he's saying. This fellow insulted us and he's doing all this.
कि नाबाल ने हमारे इस प्रकार अपमान किया और हमें निकाल दिया.
David was very angry.
और दाऊद बहुत ही क्रोधित हुआ.
He said, I'm going to teach this Nabal a lesson.
और वो कहता है कि मैं जरूर इस नाबाल को एक पाठ सिखाऊंगा.
I am going to go, we'll all go there and with swords and we'll slaughter them.
और हम सब वहां पर जाके पूरी तरह से उनका नाश कर देंगे.
Because when a man gets angry, anything he can do.
और जब एक व्यक्ति क्रोधित हो जाता है, वो किसी भी चीज हद तक जाकर कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है.
Even though David was a man after God's own heart,
और यहां तक बावजूद कि दाऊद जो था परमेश्वर के हृदय के इंसान था,
he had the same flesh like us.
लेकिन उसके पास हमारे जैसा एक शरीर था.
And he was under the old covenant.
और वो एक पुराने नियम का व्यक्ति था.
He never thought that. So he, even though it was wrong, but he went according to his instinct.
और यहां तक कि गलत था, लेकिन फिर भी अपने भावनाओं के अनुसार करने के लिए उसने वहां इच्छा व्यक्त.
So he and his young men went forward to just slaughter the whole lot of them.
और दाऊद और उसके सारे जवान जम उस सारे उनकी जो बातें है उसका नाश करने के लिए वहां गए.
So at that time, one of the household members of Nabal told Abigail that, see what has happened, the master has said like this, insulted him, and now David and all are going to come and cause us a lot of trouble, he is going to finish us.
Aur Nabal ke gharane mein se ek vyakti ne aakar Abigail se kaha, kis prakar Nabal ne unka apman karke unke logo ko nikal diya, aur ab Daud wahan se aakar unke sare logo ka naash karne wala hai.
So Abigail said, "Arey, what a terrible thing he has done. Now you please make this cakes, a lot of cakes and lot of food they prepared."
और ये वो अभिगेल कहते हैं कितनी मूर्खता भरी बात उसने की, आई हम खाने की अनेक एक वस्तु बनाए उसके लिए.
They prepared lot of food for the young men.
और इन जवानों के लिए अभिगेल ने बहुत सारी भोजन वस्तु तैयार की.
Sheep they cut, 5 sheep they cut, they cooked lot of food and they said let us go.
और 5 भेड़ों को काट के उसने भोजन को तैयार किया और लोगों से कहा कि चलो हम जाते हैं उनके तरफ.
So Abigail and her men went forward to meet David.
और अभिगेल और उसके जो लोग थे वो दाऊद से मिलने के लिए चले जाते हैं.
And then we saw that they met on the way.
और रस्ते में वो दाऊद से मिलते हैं.
And then we read here one great verse in verse 24, verse 23 and 24 of Samuel 25.
और पहला सैमुएल 25 उसका 23 और 24 वचन में इस प्रकार पाते हैं.
And when Abigail saw David, she hurried, dismounted from her donkey, and fell on her face before David and bowed herself to the ground, and she fell at his feet and said, "On me alone, my Lord, be the blame. And please let your maidservant speak to you and listen to the words of your maidservant."
दाऊद को देख अभिगेल फुर्ती करके गधे पर से उतर पड़ी और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत किया. फिर वो उसके पांव पर गिरकर कहने लगी, हे मेरे प्रभु, यह अपराध मेरे ही सिर पर हो. तेरी दासी तुझसे कुछ कहना चाहती है और तू अपनी दासी की बातों को सुन ले.
So, what she said is, her husband did all this problem, but see her words. She says, "On me alone, my Lord, be the blame."
और यहां पर वो कहती है कि सारा अपराध जो उसके पति नाबाल ने किया था, लेकिन कहती है कि जो भी सब कुछ वो किया गया उसका अपराध मेरे सर पर हो.
That's very rare to find anybody saying like that.
और बहुत ही कम हम जगह पर पाते इस प्रकार कहने वाले व्यक्ति को.
Very difficult for a husband also to say about take the blame and a wife also to take the blame.
और इस प्रकार कहना कि एक पति अपनी पत्नी के सारे अपराध को लेकर कहे कि मैं उसके सारे अपराधों को लेता हूं और पत्नी भी इस प्रकार.
एंड वर्स 28 says, "Please forgive the transgression of your maid servant."
और 28 वचन में कहता है, अपनी दासी का अपराध तू क्षमा कर.
She is taking it so much deeply, said, "Please forgive the transgression of your maid servant."
और यहां पे वो कहती है कि अपनी जो दासी है उसका तो अपराध क्षमा कर.
एंड व्हाट शी सेड वाज, David, God is wanting you to be a king, and when you become a king, you should not feel bad that you have, out of your own revenge, slaughtered this. You will feel bad about it. So I am come to. She's trying to pacify him in that way.
और वो अभिगेल जो दाऊद को ये याद दिलाती है कि दाऊद तू राजा बनने वाला है, और जब तू राजा बनेगा तो इस प्रकार क्रोध में या बदले के लेने में भावना में तूने इस प्रकार नाश किया था, ऐसा दोष तुझ पर न लगे.
she said, you have to fight the battles of the Lord, and not this. You should not feel bad when you become the king.
और तुझे तुम्हें कभी भी बुरा लगना नहीं चाहिए क्योंकि आगे जाके तुम्हें परमेश्वर की लड़ाइयों को लड़ना है.
See the wisdom that this lady had.
और देखिए उस बुद्धिमानी को जो स्त्री के अंदर पाई जाती है.
And David realized after hearing this lady, he realized and he said, "Thank you." And he said in verse 32.
और 32 वचन.
Blessed be the Lord God of Israel who sent you this day to meet me.
दाऊद ने अबीगैल से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा है.
So this lady was the one who saved her husband from getting slaughtered.
और यहाँ पर उस स्त्री ने अपने पति का नाश होने के लिए उसके नाश होने से बचाया.
Then she went and afterwards when David and all went back, David said, "I will not do that." And she went and told Nabal. When Nabal heard that David and all are coming, he became like a ice, like you know, his heart really stopped.
और वहां पे जो दाऊद है वो अपने अपने जो इच्छा जो थी उसको वो मुकर कर वापस निकल जाता. और जब अबीगैल जाके उसके पति से कहती कि दाऊद इस प्रकार तेरा नाश करने वाला था, वो बहुत ही अपने हृदय में ठंडा हो जाता है.
And after 10 days,
10 दिन के बाद
God took away Nabal's life.
और परमेश्वर नाबाल के जीवन को ले लेता है.
So God is the one who does what we are not supposed to do.
और परमेश्वर इन चीजों को करता है जो हमें जो चीजें नहीं करनी चाहिए वो परमेश्वर करता है.
So this lady took the blame.
और इस स्त्री ने उस अपराध को अपने ऊपर ले लिया.
So brothers and sisters, if you see a complete different nature.
और यहाँ पर हम बहुत एक अलग एक स्वभाव को देखते हैं.
We saw Adam and Eve blaming each other.
हमने आदम और हवा के बारे में देखा, वो एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे थे.
That is one stage of our life.
और वो हमारे जीवन का एक स्तर है.
Perhaps we can come to another level.
और शायद उससे बढ़कर हम दूसरे स्तर पर जीवन में आएंगे.
I will not blame each other, but I will accept my blame.
और ये कि मैं एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगाएंगे लेकिन मैं उस दोष को अपने ऊपर लूंगा.
Yeah, now we stop. Okay, now it's not good to blame each other. Now I will accept my fault.
और किसी और पर दोष लगाना अच्छी बात नहीं है. मैं अपने जो मेरी गलती है उसको मैं मान लूंगा.
Whatever wrong I've done, I'll accept it.
और जो गलत मैंने किया उसको मान लूंगा.
That's a good place.
और ये अच्छी जगह है.
But this is even further than that.
लेकिन यहाँ उससे आगे बढ़कर एक स्तर है.
This is taking the blame of somebody else.
और ये ऐसी जगह है जब हम किसी और के दोष को अपने ऊपर लेते हैं.
That is the level which, if we come to, we will be like some rare people.
और अगर हम इस प्रकार के स्तर यहाँ तक आते हैं, तो हम वैसे लोग बनेंगे जो बहुत बहुत ही संख्या में कम होते हैं.
The first two, many people will be on that level.
और पहले जो दो स्तर थे उसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं.
But to this level, very rarely people will come.
लेकिन बहुत कम लोग ये तीसरा जो स्तर है वहां तक पहुंच पाते हैं.
I'm challenged to come to that level.
और मुझे चुनौती मिली है उस तीसरे स्तर तक पहुंचने के लिए.
I want to tell you of Judah.
यहूदा के बारे में पता था.
Judah, the one of the sons of David, sons of Jacob.
और जो यहूदा जो याकूब के जो पुत्रों में से यहूदा एक जो उसका बेटा था.
He, when he was willing to stand as a surety for his brother Benjamin.
और बेंजामिन के लिए अपने भाई के लिए वो एक गारंटी है, एक गारंटी के लिए वो खड़ा होना चाहता था.
And in Genesis chapter 44,
उत्पत्ति उसका 44 अध्याय,
verse 32 and 33,
उसका 32 और 33.
Read book. Genesis chapter 44 verses 32 and 33.
Utpatti 44, 33 aur 34.
Okay, I'll read it. And we said to my... Sorry. For your servant became surety for the lad to my father, saying, if I do not bring him back to you, then let me bear the blame before my father forever. Now therefore, please let your servant remain instead of the lad a slave to my lord, and let the lad go up with his brother. So here he was, he saying, I will take the blame forever if Benjamin does not come back.
और यहाँ पर जो यहूदा है अपने ऊपर वो अपराध को लेता है और वो जामीन बनकर कहता है कि अगर बेंजामिन को मैं वापिस नहीं लाता हूँ तो मैं उस जगह पर मैं अपने आप को दे दूंगा.
That is a rare quality.
फिर बहुत ही कम पाए जाने वाली एक गुणवत्ता है.
Amazing quality of Daniel is Daniel.
और दानियल के जीवन में भी इस गुण को हम देखते हैं.
You know, Daniel was a man who determined not to defile himself.
और दानिय्येल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मन में ठान लिया कि वो अपने आप को अशुद्ध नहीं करेगा.
He was very close to the Lord. He was holy.
और बहुत परमेश्वर के नजदीक था, पवित्र था.
But when he was praying for his country, see how he prays.
और जो अपने देश के लिए जो वो प्रार्थना कर रहा था, देखिए वो कैसे प्रार्थना करता है.
The rest of the Jews were compromisers.
और दूसरे जो यहूदी थे वो समझौता करने वाले यहूदी थे.
And he is praying for his people and his country.
लेकिन वो यहाँ अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना कर रहा है.
We would tend to normally pray, Lord, all my fellow men are so wicked.
और हम कई बार इस प्रकार प्रार्थना करने के लिए मजबूर होते कि प्रभु हमारे जो आसपास के लोग हैं वो कितने बुराई से भरे हुए हैं.
Please help them to become well.
प्रभु उनकी सहायता करे कि वो अच्छे बन सके.
That would be normally our prayer. Lord, we see all sort of wickedness around and we, but here Daniel prays in Daniel 9 verse 5.
Daniel उसका 9 अध्याय उसका 5 वचन.
He says, we have sinned and committed iniquity, acted wickedly, rebelled, even turning aside from the commandments. He said, we have sinned.
और वो दानियल कहते हैं हम लोगों ने पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है. वो कहता है हम लोगों ने पाप किया.
And verse 8 says, open shame belongs to us, O Lord.
8 वचन में कहता है, हे यहोवा, हम लोगों ने अपने राजा, हाकिम और पूर्वजों समेत तेरे विरुद्ध पाप किया है.
Many things, this whole prayer says he takes it upon himself.
और बहुत सारी इन प्रार्थनाओं के द्वारा हम देखते हैं कि वो जो दोष अपराधों को अपने ऊपर ले लेता है.
So when we are interceding, when we are interceding for our country and for our family or anyone, unless we follow this sort of pattern, this is the pattern that God has kept for us. We include ourselves.
और जब तक हम अपनी प्रार्थनाओं के अंदर, मध्यस्थी प्रार्थनाओं के अंदर, या हमारे परिवार के लिए, हमारे देश राष्ट्र के लिए हो सकता है, हम इस प्रकार का जो पैटर्न जो है उस प्रकार अगर हम प्रार्थना नहीं करते, अपने आप को उसमें सम्मिलित करते हुए,
that pattern is heard by God.
और इस प्रार्थना को, इस भाग को परमेश्वर के द्वारा सुना गया.
Daniel 8 verse 23 says,
और दानियल 8:23 के अंदर लिखा है,
at the beginning of your supplication the command was issued and I have come to tell you that you are highly esteemed. So give heed. At the beginning of your supplication, 9:23, the command was issued by God, and I have come to, there is an angel, I have come to tell you that you are highly esteemed, so give heed. So God, his prayer was answered the way, very time he said, we have sinned.
और जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तब ही उसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैंने तुझे बताने आया हूं क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है. उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात को अर्थ जान ले. जब उसने उस प्रार्थना विनती किया, उसकी प्रार्थना तभी सुनी गई.
Daniel was a holy man.
दानियल एक पवित्र व्यक्ति था.
But when he prayed, he said, we have sinned.
लेकिन वो जो प्रार्थना करते कहते प्रभु हमने पाप किया है.
So that is the thing which God really loves to hear when we know we try to take the blame of others.
परमेश्वर सच में इन बातों को हमसे सुनना चाहते हैं कि जब हम औरों के अपराध, औरों के दोष को अपने ऊपर लेकर प्रार्थना करते हैं.
We know the story of Moses. Moses was when after the children of Israel were worshipping the golden calf.
और मूसा की कहानी के हम जानते हैं कि जब वो सोने का जो बछड़े उसको बनाकर उसकी आराधना जब वे करने लगते हैं,
God was so angry, God wanted to, punish them.
परमेश्वर इतना क्रोधित था, उन लोगों को वो दंडित करना चाहता था.
Even then Moses was saying, I'll try and see if I can make atonement for them.
और वो परमेश्वर के सामने कहते हैं, प्रभु मैं तेरे सामने उन लोगों के प्रति प्रायश्चित करता हूं.
And in Exodus 32 verse 32 he says, Lord, if you that you will forgive them.
और निर्गमन 32:32 में मूसा कहता है कि प्रभु अगर तू क्षमा करेगा.
And if you don't forgive, you blot my name from the book.
और प्रभु अगर तू प्रभु उनको क्षमा नहीं करेगा तो प्रभु मेरे जीवन को उस पुस्तक से, मेरे नाम को निकाल दे.
These are exceptional. You will not find such people.
और ये बहुत ही न दिखने वाली है, कभी भी ऐसी चीजों को हम नहीं देखते कहीं.
As much as he loved God, he says, blot my name, but forgive them.
और वो कहते हैं परमेश्वर से प्रेम वो करता है, कहते हैं प्रभु मेरे नाम को उस पुस्तक से निकाल दे, पर इन लोगों को तू क्षमा कर दे.
The apostle Paul in Romans 9, he says, I wish I was accursed. I would be accursed. So that my kinsmen would come to know God.
और रोमियो 9 अध्याय के अंदर पॉलुस कहता है कि ये भला होता कि मैं अपने भाई और बहनों को बचाने के प्रति मैं श्रापित बन जाऊं.
I would like to look at 2 Corinthians 5:21.
दूसरा कुरिन्थी 5:21.
Brothers and sisters, this verse is tremendous. We must remember this. 2 Corinthians 5:21.
दूसरा कुरिन्थी 5 उसका 21 वचन.
Finally, Jesus.
और अंत में हम यीशु की ओर देखें.
He made him who knew no sin to be sin on our behalf that we might become the righteousness of God.
और जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं.
So he who knew no sin became sin for us.
और जो पाप नहीं जानता था वो हमारे लिए पाप बन गया.
So that we will be justified.
ताकि हम धर्मी ठहराए जाएं.
That is a final. You can never go beyond that.
और ये अंतिम बात है, इससे आगे हम नहीं जा सकते.
So when we face life and when somebody says that no, you have done it, and when actually we have not done it.
और जब हम जीवन का सामना करते हैं, कोई कहता है कि भाई आपने ऐसा किया और वास्तव में हमने ऐसा नहीं किया होता.
There's a group of 2-3 people and some problem has occurred and they say no, you have done it.
और कुछ समस्या आ गई, 2-3 लोगों ने कहा कि आपकी वजह से आपने ये किया इसलिए समस्या आई है.
Even the ones who have done it is keeping quiet.
और जिसने शायद किया होगा वो भी शांत वहां पे खड़े होंगे.
And you know you have not done it.
और आप मन में जानते कि आपने वो काम नहीं किया है.
Just to save the others, if we take the blame.
और वहां पर औरों को केवल बचाने के लिए हम उस अपराध को अपने सर पे अपने ऊपर ले लेते हैं.
My example may not be very, very perfect, but what I'm saying is that we face situations where we are misunderstood.
और मेरा जो उदाहरण है वो इतना सिद्ध नहीं होगा, लेकिन जब हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जहां पे हम गैर समझ किए जाते हैं.
एंड देन वी आर मोर इंटरेस्टेड इन बीइंग क्लियर्ड.
और वहां पर हम बहुत रुचि रखते, दिलचस्पी रखते हैं कि हम लोगों को अपने आप को साबित करें.
एंड द अदर्स शुड नो दैट आई एम नॉट द वन.
ताकि और लोग जान सके कि मैंने वो गलती नहीं की है.
व्हाई नॉट लीव इट टू द लॉर्ड.
और क्यों हम परमेश्वर पर ना सौंपे.
एंड व्हाई नॉट बाय जस्ट कीपिंग क्वाइट इफ सम गुड हैपेंस.
और अगर मेरे शांत रहने से अगर कुछ भला या अच्छा हो सकता है.
If Jesus could become sin for us,
यदि यीशु मसीह हमें बचाने के लिए अगर वो पाप बन गया.
If our master, if our God did that, can't we follow him in that?
और हमारे स्वामी हमारे परमेश्वर ने अगर ऐसा किया तो क्या हम उसका अनुसरण इस बात में नहीं कर सकते.
So if somebody says the sin which say Kiran has done is on me,
और ऐसे कि जो पाप किरण ने किया है वो मेरे ऊपर आप लाद दो.
And I'm not afraid to take it.
और मैं नहीं उस आजाद उस पाप को लेने के लिए.
So there are situations in life where we all will come across where we are so concerned about our reputation.
और जीवन के अंदर ऐसे हालातों से हम गुजरेंगे, ऐसी परिस्थितियों का सामना करेंगे जहां अपनी जो नाम और छवि है उसके प्रति बहुत ही कंसर्न रहते हैं.
But let us be free from that reputation.
लेकिन वो नाम जो है अपने आप उससे हम आजाद बने कि हमको नाम चाहिए उस बात से.
The reputation does not mean anything if the main thing is that how we are connected to God.
और जो नाम है अच्छा नाम चाहने से यो अच्छी और भली बात है कि हम परमेश्वर से जुड़े हुए रहे.
So I just want to be challenged to be encouraged by the examples of these people like Moses and Paul, Judah and Daniel and many more.
और ऐसे परमेश्वर के जो जन है, जो मूसा है, दानियल, अबीगेल और भी जो लोग हैं, उनसे मैं प्रोत्साहित होना चाहता हूँ.
That I don't want to blame others.
मैं औरों के ऊपर दोष लगाना नहीं चाहता.
For some fault of some any problem have happens to me.
और कोई भी समस्या जो मेरे जीवन में या कोई भी गलती हुई है उसके कारण.
When as a family head, father is a head, mother is there, parents are there. When children something happens, if we blame it on the children, it's not a right thing.
और एक माता पिता जब बच्चों से कोई अगर कोई गलती हो जाती है और बच्चों के ऊपर वो उस आक्षेप या उस दोष को लगाते हैं तो वो सही नहीं कर रहे हैं.
In the church, when there are elders, when there is some problem with any people, and we keep on putting the blame on others, that's not the right spirit.
और कलीसिया के अंदर भी अगर कलीसिया के लोगों के अंदर कुछ गड़बड़ी होती है, समस्या होती है, और जो प्राचीन जो है उनके ऊपर उस गलती को, उस उंगली को उठाते हैं, वो सही बात नहीं है.
Maybe there was a lack in me in showing the truth properly.
और हो सकता है शायद ये कि मेरे अंदर कुछ कमी है ताकि वो सत्यों को मैं उनको अच्छी तरह से बता नहीं पा रहा हूँ.
So I don't try to blame. I say Lord, I can take the blame.
और इसलिए मैं उनके ऊपर दोष या आरोप नहीं लगाऊंगा लेकिन अपने ऊपर उसे ले लूंगा.
That's the way Jesus went.
और इसी प्रकार यीशु मसीह ने जिया.
He took our blame.
उसने हमारे पापों को, उन अपराधों को ले लिया.
This will change our life so much.
और ये इससे पूरी तरह से जीवन बदल दिया.
It will make us more like Christ.
और ये हमें और यीशु के समान परिवर्तित करेगा.
When we try to blame others, it's more like the devil doing that.
और जब हम औरों के ऊपर दोष लगाने लगते हैं, हम शैतान की तरह करने लग जाते हैं.
When we accept our blame, we are being true.
और जब हमारे दोषों को हम मान लेते हैं तो हम एक सत्य के पीछे चलते हैं.
When we try to take the blame of others,
और जब औरों के दोष को अपराधों को अपने ऊपर ले लेते हैं,
then we are nearing Christ-like life.
और तब हम एक मसीह के समान जीवन को जीने लग जाते हैं.
Some thoughts and things which has gone through my mind, I wanted to share.
और ये चीजें मेरे मन में थी जो मैं आपसे बांटने चाहना था.
I thank God for the very, very encouraging and challenging message.
परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ जो प्रोत्साहित और चुनौती देने वाला वचन जो आज मैंने सुना.
This world we know is full of people who want to blame others.
और संसार ऐसे लोगों से भरा हुआ जो एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते रहते हैं.
What to say, even the believers have that tendency to blame others.
और यहाँ तक विश्वासियों के अंदर भी ऐसा स्वभाव होता है जो औरों के ऊपर हमेशा दोष लगाते रहते हैं.
We can see plenty of husbands blaming their wives, plenty of wives blame their husbands or children for everything.
और बहुत सारे ऐसे ऐसे पति होते हैं जो अपनी पत्नी के ऊपर दोष लगाते हैं, पत्नी होती जो अपने पति के ऊपर या बच्चे.
So in the midst of that, if everyone is taking their own genuine share of responsibility, or that itself is a great thing.
और इन सारी बातों के मध्य में अगर हर व्यक्ति उस जिम्मेदारी को ले ले,
that itself is a very honorable thing.
और ये बहुत ही आदर के योग्य बात मानी जाएगी.
Then shifting the responsibility or blame on someone else.
और अपनी जिम्मेदारी या अपने जो दोष है वो किसी और के ऊपर डालने के बजाय.
But we were reminded today and encouraged and challenged today of another level.
और आज हमें ये प्रोत्साहित किया गया, याद दिलाया गया कि एक नए स्तर, एक दूसरे स्तर तक लेकर आने अपने आप को देखने के लिए.
लाइक ए नोबल एटीट्यूड ऑफ पीपल लाइक अबिगेल.
और जो अबिगेल के जीवन से जो उमदा चरित्र या गुण हम देख सकते हैं.
Having no hesitation in receiving the blame of others. Abigail was, she had no hesitation shouldering the responsibility of her foolish husband.
और कोई भी झिझक अबिगेल में नहीं थी कि उसका जो मूर्ख पति था, उसकी जो सारी जो दोष था, मूर्खता, उसकी जो गलती अपने ऊपर लेने और मानने के लिए.
That is a really amazing thing.
और ये बहुत ही अद्भुत बात है.
Something similar thing I was reading in the book of Nehemiah.
और नहमिया की पुस्तक में ऐसा ही कुछ मैं पढ़ रहा था.
When Nehemiah heard about the happenings in Jerusalem.
नहमिया ने जब यरूशलेम में जो घटनाएं हो रही उसके बारे में जब उसने सुना.
When he realized that that city was in great distress.
और यहाँ पे देखा कि एक बहुत ही बुरी हालत में वो शहर पाया गया.
And in reproach, humiliation.
और बहुत ही एक अनादर की जगह पर उसको पाया गया.
And when he learned that the wall of Jerusalem was broken down and its gates were burned with fire.
और वहाँ पे देखते हैं कि उसके जो आसपास की जो शहरपनाह वो टूटी हुई थी, उसके जो द्वार थे वो अग्नि से जलाए गए थे.
So what was the response of Nehemiah?
और नहमिया का प्रत्युत्तर क्या होता है?
Nehemiah was not directly responsible for any of this.
और नहमिया जो है इन सारी चीजों के प्रति कुछ उसका सीधा प्रत्युत्तर नहीं था.
But it's written in Nehemiah chapter 1 verse 4.
नहमिया पहला अध्याय उसका चार वचन.
When I heard these things, I sat down, wept and mourned for days. And I was fasting and praying before the God of heaven.
ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा.
So when he heard all the misery in Jerusalem, he wanted to take a share of that pain in his own heart.
और जब उसने सुना यरूशलेम की बंधुआई, उसकी दुर्दशा के बारे में, उस दर्द के अंदर वो अपने एक भाग, एक हिस्से को बांटना चाहता था.
He chose to cry and mourn about it and sought the face of God in fasting and prayer.
और वो उपवास करते हुए, रोते हुए परमेश्वर के मुख को वो खोजता है.
We are not finding him finding for this wicked Jews. He's not finding the fault of any of his people or the kings. Really did wickedness and disobedience before God.
और यहाँ पे वो नहमिया जो है किसी राजा या किसी दुष्ट यहूदियों के दोष को या गलतियों को नहीं ढूंढ रहा है.
And he's praying a prayer from his heart, which is coming out of his heart in genuineness.
लेकिन यहाँ पर वास्तव में अपने हृदय से निकलने वाली प्रार्थना वो कर रहा है.
That we can read in verse 6.
छे वचन में.
Nehemiah chapter 1 verse 6.
नहमिया 1:6.
Let your ear now be attentive and your eyes open to hear the prayer of your servant, which I am praying before you day and night on behalf of the sons of Israel, your servants, confessing the sins of the sons of Israel, which we have sinned against you. I and my father's house have sinned.
और तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास इस्राएलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इस्राएलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है।
So he is confessing the sins on behalf of his own people.
और अपने जो अपने लोग इस्राएल हैं उनके प्रति वो पापों को उनके मान रहा है।
And he himself is not exempting himself from that.
और अपने आप को वहाँ से दूर या अलग नहीं कर रहा है।
He is saying that I and my father's house have sinned.
और वो कहते हैं मैंने और मेरे पिता के घराने जो पाप किया है।
He is owning that responsibility on himself.
और वो अपने ऊपर उस जिम्मेदारी को ले रहा है।
He is taking the sins on himself, that responsibility.
और जो औरों के जो पाप है वो जिम्मेदारी के रूप में अपने ऊपर वो ले रहा है।
That's a very noble heart which God cannot despise.
और ये बहुत ही उम्दा एक हृदय है जिसको परमेश्वर तुच्छ नहीं जानता है।
As we are reminded and encouraged, may God really take us to that level.
और सच में जब इसको हम सुनते हैं समझते हैं तो परमेश्वर सच में उस स्तर तक उस हमें लेकर जाए।
Let Holy Spirit do that work in our lives. If we are in a position now, our nature is to find fault with others like Eve.
और अगर हवा के समान हमारा ऐसा स्वभाव है कि औरों के प्रति हम औरों की गलतियां उन पर दोष लगाते हैं।
When they are cornered looking, whom I can place this responsibility?
और जब उन पर कोई दोष लगाया जाता है वो देखते और लोगों किस भी ऊपर ये दोष ये जिम्मेदारी में डाल दूं ठोप दूं।
From there, instead of blaming others, we can grow to a level at least where I take my own share of responsibility first.
और किसी और पर दोष लगाने से पहले हम उस जिम्मेदारी को जो पहले सबसे पहले मुझे लेनी है उस चीज पर हम ध्यान दें।
And we can even go beyond. I can even take the responsibility others. I own that responsibility. I and my fathers have sinned.
और उससे आगे बढ़कर नए स्तर पे जहाँ पे हम औरों की जो गलती है जो दोष है उसके ऊपर वो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले और कहे नहमिया के समान मैंने और मेरे पिता के घराने ने पाप किया है।
May God bless us with these thoughts.
और परमेश्वर इस वचनों से हमें आशीष दे।
Good morning everyone.
सभी को सुप्रभात।
Yeah, my name is Vikas Shah.
मेरा नाम विकास शाह है।
I was born and raised here in Bombay.
और मेरा जन्म इस मुंबई शहर में और यहीं पर मैं पला बड़ा।
When I was 14 years old, my father passed away.
और जब मैं 14 वर्ष का था तब मेरे पिताजी गुजर गए।
After my father passed away, our family circumstances changed a lot and we struggled a lot.
और जैसे ही मेरे पिताजी गुजर गए उसके बाद हमारे परिवार में समस्या है और हम बहुत ही संघर्ष से गुजर रहे थे।
Because of that, I had to quit my studies when I was 15 years old and start working to support my family.
और जब मैं 15 वर्ष का था तब मुझे अपनी पढ़ाई को छोड़ देना पड़ा और मुझे मजबूरी के कारण काम पर लगना पड़ा।
I failed year 10th 3 times.
और मैंने 10वीं कक्षा में 3 बार फेल हुआ हूं।
Then I quit studies for 8 years.
और 8 साल के लिए मैंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया।
फिर मैंने I failed year 12th 2 times. Year 12, HSC 2 times.
और जो 12वीं कक्षा है जो 12वीं उसमें मैं 2 बार फेल हुआ।
ड्यूरिंग दिस 11 years, आई स्ट्रगल अ लॉट एवरी फाइनेंशियली इमोशनली इन एवरी वे।
और इन 11 वर्षों में मैं बहुत ही संघर्ष से गुजर रहा था।
इन 99 आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी गो टू यूनाइटेड अरब एमिरेट्स।
और 1999 में मैं यूनाइटेड अरब में मुझे अवसर आया जाने के लिए।
When I went there, one of my cousin brother spoke with his boss that my cousin is coming from India. Can you help him find a job?
और मेरे वहाँ पर एक जो भाई है वह उसने वहाँ के जो बॉस है मालिक है उनसे बात की कि मेरे भाई को आप यहाँ पर काम पर रख सकते हैं क्या?
But I didn't have any formal qualification to get any proper job.
और नौकरी मिलने के मेरे पास अच्छी शिक्षा नहीं मिली थी मुझे।
So my cousin brother's boss told him to tell Vikas to come and meet me.
और मेरे भाई ने जिस बॉस से बात की उसने मेरे भाई से कहा कि तुम तुम्हारे भाई विकास को बुलाओ यहाँ पर मैं उनसे बात करूँगा।
When I met him, I thought that he is meeting me to help me find a job or giving me a job.
और जब उसने मुझे बुलाया तब मुझे लगा कि वह मुझसे बात करेगा मुझे एक नौकरी मिलने में मदद करेगा।
But instead, he shared gospel with me. He shared about the Lord with me.
लेकिन उसने नौकरी के विषय में बात करने के बदले उसने प्रभु का संदेश मुझे बांटा।
That went on. We would meet every week, couple of times a week, for 2-3 months.
और कुछ महीनों में कई हफ्तों में हम मिलते थे 2-3 बार एक दूसरे से।
On 18th August 99, I came to know the Lord and He baptized me in Abu Dhabi.
और अबू धाबी में 18 अगस्त 1999 को मैंने प्रभु को जाना प्रभु को ग्रहण कर बपतिस्मा लिया।
And then he told me that you can ask, pray, ask Jesus, he will help you find a job.
और उसने मुझसे कहा कि तुम यीशु से प्रार्थना करो और यीशु से सहायता मांगो कि तुम्हें वो एक नौकरी ढूंढने में सहायता करे.
So I started praying.
और मैंने प्रार्थना करना शुरू किया.
On 12th September 99, just 1.5 month later, I found my first job in Abu Dhabi.
और 12 अगस्त 1999 में मुझे प्रभु ने पहली नौकरी मिलने में सहायता की.
I hope, at that time I thought that, wow, okay, now things will be smooth, but it didn't go that way after I found my job.
और मैंने सोचा जब मुझे नौकरी मिल गई तो अब मेरे साथ जो होगा अच्छा ही होगा, लेकिन जैसा सोचा वैसा नहीं हुआ, पूरा उल्टा होने लगा.
There is lot of struggles, lot of uncertainty at job and there were lot of conflicts at work.
और बहुत सारी समस्याएं आने लगी, मैं संघर्ष करने लगा मेरे काम के अंदर.
Then at that time I used to meet this person and he who kind of led me to Christ. And he said, you can start praying and claim Psalms 91. He showed me Psalms 91.
और जिस व्यक्ति ने मुझे, जो मेरे बॉस है, उन्होंने जो नौकरी दी और मुझे यीशु के बारे में बताया, मैंने उनसे कहा, उन्होंने कहा तुम इस विषय के लिए यीशु से प्रार्थना करो और वो तुम्हें इससे बाहर निकालेंगे. उन्होंने आश्वासन दिया भजन संहिता 91 का.
So then I would go to work 15-20 minutes before everyone else would come.
और मैं जब भी काम पर जाता किसी और के पहुंचने से पहले पहुंचता.
And I would start praying, claim, I would say loudly Psalms, sing, or pray or sing Psalms 91 and claim that.
और मैं ऊंची आवाज उठाकर प्रार्थना करता था और भजन संहिता 91 को मैं मांगता था प्रभु से.
In 4-5 months, circumstances changed again.
और 4-5 महीनों में मेरी परिस्थिति बदल गई.
My boss called me to his office.
और मेरे जो बॉस है, स्वामी है, उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया.
एंड ही टोल्ड मी दैट आई हैव फाउंड आउट लाइक व्हाई देयर वर लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्कप्लेस बिकॉज़ ऑफ ऑल द डर्टी पॉलिटिक्स वाज गोइंग ऑन अगेंस्ट मी इन द वर्कप्लेस.
और मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि मैंने देखा है कि हमारे इस ऑफिस में जो काम करते हैं उनके बीच एक राजनीति चल रही है और वो कई सारे भेदभाव पक्षपात करते हैं.
सो देन सो आफ्टरवर्ड्स आई केम अक्रॉस साम्स 47. बाय द वे आई वाज ब्रांड न्यू, आई वाज जस्ट 2 मंथ्स ओल्ड Christians, I didn't know a lot, but I came across Psalms 47 at that time.
और मैं उस समय मसीह में बिल्कुल नया और तरोताजा होकर ही आया था और 2 महीने ही हुए थे और मैंने भजन संहिता 47 मुझे मिला.
And everything circumstances changed again, and I was working, and they were happy with my work.
और फिर से मेरी परिस्थितियों को प्रभु ने बदला और मेरे काम में फिर से एक बदलाव आया और सब अच्छा होने लगा.
During that time, I realized that for me to move forward in my career, I need to have a formal education.
और फिर मुझे एहसास हुआ कि यदि मुझे मेरे इस काम में, मेरे जीवन के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो मुझे अच्छी शिक्षा की जरूरत है.
So I prayed and asked Jesus, can you help me finish my education?
और मैंने यीशु से प्रार्थना की और सहायता मांगी कि प्रभु मेरी सहायता करे मेरी पढ़ाई पूरी करने में.
So in 2001,
और 2001 में
the Lord opened door for me to go to Australia.
और प्रभु ने मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए एक द्वार खोला.
I went to Australia. I lived there for 7 years.
और वहाँ पर मैंने 7 वर्ष रहकर अपनी पढ़ाई की.
And by the grace of God.
और प्रभु के अनुग्रह से.
I finished my bachelor's degree and my master's degree as well.
और मैंने अपनी पढ़ाई को पूरी किया और वहाँ पर डिग्री ली.
And things changed. I Lord opened another door for me to go to United States in 2010.
और प्रभु ने 2010 में फिर से मेरे लिए मार्ग खोला और परिस्थितियां बदल गई और मुझे अमेरिका जाने का अवसर मिला.
Where I met so many wonderful people.
और वहां पर मैं कई सारे अद्भुत और अच्छे लोगों से मिला.
And they really helped me to grow in the Lord as well.
और उन्होंने मेरी सहायता की प्रभु में और बढ़ने और मजबूत होने के लिए.
The reason I want to share this testimony.
और कारण यह है कि यह गवाही मैं जो आपके साथ बांट रहा हूँ.
To encourage one another.
कि हम एक दूसरे को उत्साहित करें.
Recently, Lord opened my eyes to see.
और हाल ही में प्रभु ने मेरी आंखों को खोला है देखने के लिए.
From Romans 8:28.
और रोमियो 8:28 से.
It says that, and we know that in all things God works for good of those who love Him, who have been called according to His purpose.
हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलाकर भलाई ही उत्पन्न करती है.
Many times, I'm sure we all face that when things go, when challenges in life come.
हम सभी जो हमारे जीवन में यह सभी समस्याओं का सामना करते हैं जब बातें हमारे उल्टी दिशा में होती हैं.
तो I used to feel that way, that why it's happening to me.
और मुझे ऐसा तब लगता है, मैं ऐसे सोचता हूँ, यह क्यों मेरे साथ हो रहा है.
But then, recently Lord opened my eyes that whatever is happening, it's not happening to you, but it's happening for you.
और तब प्रभु ने मुझसे इस वचन के द्वारा बात की और कहा कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे साथ नहीं तुम्हारे लिए हो रहा है.
And that kind of shifted everything.
और यह जैसे ही यह मुझे दिखने लगा पूरी तरह से मेरे अंदर बदलाव आया.
Yes, and it kind of challenges are still there, but you have a different mindset and you face that challenge thinking that this is happening for me, not to me.
और अब भी चुनौतियां सामने हैं लेकिन प्रभु सहायता करेंगे हम सभी को कि इन चुनौतियों के हम इस वचन के द्वारा सामना करें.
थैंक यू.
धन्यवाद.
हेलो, माय नेम इज कॉलिन.
हेलो सभी को, और मेरा नाम कॉलिन है.
इट्स द फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग समथिंग विद अ ट्रांसलेशन.
और यह पहली बार है कि जब मैं किसी अनुवाद करने वाले के साथ में हूँ बोल रहा हूँ.
But I just want to share on what we sang this morning.
और मैं आज सभी से उस विषय पे बातना चाहता हूँ जिसके विषय में आज हमने सुबह गाया है.
Where we sang that God is great in power, great in glory, great in wonder.
और जैसे हमने गाया कि प्रभु महान है, सामर्थ में महान है, जो उसकी अद्भुत शक्ति है उसमें.
And He is beautiful beyond description.
और वह वर्णन से भी बाहर है.
And He is of infinite wisdom.
और वह समझ से परे है.
So based on this is something that I had meditated upon a couple of weeks ago.
और यह जो है वास्तव में यह बात है जो मैं पिछले कुछ सप्ताह से जिस पर मनन करता हूँ.
Whenever I would come to the Lord in prayer and asking for any petition.
जब कभी मैं किसी विषय को लेकर प्रार्थना में प्रभु के सम्मुख बैठता हूँ.
I would always approach Him with this knowledge that He is a God of great compassion.
और जब कभी मैं उनके सम्मुख प्रार्थना को लेकर आता हूँ तब मैं अपनी समझ में यह जानता हूँ कि वह परमेश्वर है जो दया का सागर है.
बट लेटली व्हेन आई वाज रीडिंग सो एज आई रेड थ्रू द ओल्ड टेस्टमेंट थ्रू द बुक ऑफ जोब एंड द गॉस्पल्स एंड द बुक ऑफ रेवलेशन.
और जैसे ही मैं पुरानी वाचा की पुस्तकों को पढ़ रहा था और सुसमाचार की पुस्तकों को पढ़ रहा था.
इट डॉन्ड अपॉन मी एस्पेशली फ्रॉम द बुक ऑफ जोब.
और जो वास्तव में मुझे छुआ वो अय्यूब की पुस्तक से था.
दैट ही इज ऑल्सो द गॉड ऑफ अनसर्चेबल विजडम.
और मैंने वहां पर पाया कि परमेश्वर ऐसे हैं जो खोज नहीं कर पाए ऐसी समझ से बाहर हैं.
ऑल्सो विथ रिगार्ड टू द सर्टन सेक्शंस ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट एंड द बुक ऑफ रेवलेशन.
और मैंने उसके साथ साथ पुरानी वाचा की कई पुस्तकों पढ़ा और प्रकाशित वाक्य को भी पढ़ा.
आई गॉट टू नो दैट ही इज अ गॉड ऑफ इमेंस रात.
और मैंने जाना कि परमेश्वर क्रोधित भी होते हैं.
सो दिस दीज आर जस्ट थ्री एट्रीब्यूट्स आउट ऑफ द मेनी दैट ही हैज.
और यह केवल तीन गुणवत्ता है परमेश्वर की जो बहुत सारे उनमें जो गुण हैं.
बट इट इन अ वे एनेबल्ड मी टू अप्रोच हिम इन प्रेयर डिफरेंटली.
और इसके साथ मुझे एक सहायता मिली कि परमेश्वर के सामने मैं एक दूसरे दृष्टिकोण को लेकर जाऊं.
दिस ट्रूथ मेड मी फॉल ऑन माई नीज एंड आई फेल्ट इन अ वे अनवर्दी टू बी इवन In His presence.
और इस बात को जानने के बाद मैंने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर गया कि यह सोचकर कि मैं एक अयोग्य हूँ और योग्य नहीं कि उसके सम्मुख जा सकूँ.
I felt I was not even worthy to worship Him from a distance.
और मैंने ऐसा जाना कि मैं अयोग्य हूँ कि मैं दूर से भी उनकी आराधना करने के लायक नहीं.
But that is where the value and the importance and the weight of Jesus Christ was even more. Expounded for me in my life.
और यही यीशु मसीह जो परमेश्वर के सम्मुख जाते थे जो मेरे जीवन में आए.
And with that truth, I realized that in the shadow of Christ, I can approach the unapproachable light.
और यीशु मसीह की छाया में होकर मैंने जाना कि मैं परमेश्वर के सम्मुख जा सकता हूँ जो मैं बिना यीशु के नहीं जा सकता.
This truth blessed me and enabled me to revere God with a reverential fear.
और इसी बात से मैंने परमेश्वर को जाना और भय के साथ जाना.
एंड ऑल्सो टू कम टू हिम विथ न्यू ट्रूथ.
और परमेश्वर के साथ एक नए सत्य को जानते हुए मैं आने लगा.
सो आई वांट टू एंड बाय दिस दैट मेनी ऑफ अस हैव पेटिशंस एंड डिजायर्स दैट वी ब्रिंग टू द लॉर्ड.
और हम सभी की कई सारी प्रार्थनाओं के विषय होते हैं जो हम परमेश्वर के सामने लाते हैं.
एंड बट Psalms 145 verses 18 and 19 says.
लेकिन भजन संहिता 145 का 18 और 19 कहता है.
The Lord is near to all who call upon Him.
परमेश्वर जो कोई उन्हें पुकारते उनके समीप रहते हैं.
To all who call upon Him in truth.
और जो सत्य में उनको पुकारते हैं.
And He will fulfill the desire of those who fear Him.
और जो उनका भय मानते हैं वह उनके दिल की इच्छा को पूरा करेंगे.
He hears the cry and saves them.
वह उनका रोना और दुहाई सुनते हैं और उनको बचाते हैं.
This, so I came to him when I approached God, I approached him with this truth that he is the God of unsearchable wisdom.
और जब मैं परमेश्वर के सामने आया तब मैंने परमेश्वर को जाना और यह जानते हुए उनके सामने आया कि वह ऐसे हैं जो समझ के बाहर हैं और उन्हें खोजा नहीं जाता.
And that he is a God of immense wrath.
और वह ऐसे परमेश्वर है जो बहुत क्रोधित भी होते हैं.
And that he is a God of immense compassion.
और वह परमेश्वर है दया के सागर हैं और करुणामय हैं.
This blessed me personally to approach him with, as I said, in truth and in fear.
और यह व्यक्तिगत रूप से मेरे जीवन का आशीष क्या है कि मैं भय के साथ और प्यार में परमेश्वर के सम्मुख आऊं.
And I pray it blesses you too.
और मैं भी चाहता हूं कि आप भी, आपको भी आशीष करें.
Praise and thank the Lord for this lovely time and testimonies and word of God what we have heard.
और प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन सारे बातों के लिए जो गवाही हमने अभी सुनी और उत्साहित वाले वचन हमने जो अभी सुने हैं.
We are really not all perfect. We are all not perfect.
हम सभी, हम में से कोई भी सिद्ध नहीं है.
But we are growing towards that perfection.
लेकिन हम सभी उस सिद्ध बनने की ओर बढ़ रहे हैं.
And it's really, you know, very much needed that God's word is important, fellowship is important, Holy Spirit is important.
और हमारे लिए बढ़ने के लिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए जरूरी है और भाई और बहनों की कलीसिया की संगति हमारे लिए जरूरी है, पवित्र आत्मा की संगति हमारे लिए जरूरी है.
We all have one life.
हम सभी को एक ही जीवन मिला है.
And we should be so thankful about it that the grace is so much upon us.
और हम सभी को परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि उनका अनुग्रह हमारे इस एक मिले हुए जीवन पर है.
And it is again the grace of God which holds us every day in our life.
और हमारे जीवन में हर एक दिन परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमें लेकर चलता है.
As we heard in the morning, you know, God created Adam and Eve.
जैसा हमने सुबह के समय अभी सुना कि परमेश्वर ने आदम और हवा की रचना की.
But then when it came to a point of testing.
लेकिन जब उनकी परीक्षा का समय आया.
No one was ready to take the blame on themselves.
कोई भी उन दोनों में से तैयार नहीं था कि वह जो इल्जाम है, वह जो दोष है, वह अपने खुद के ऊपर ले ले.
And today, you know, it's again like the Spirit encouraging us, you know, to understand where we are.
और आज पवित्र आत्मा हमें यह स्मरण दिलाकर यही बात कहता है कि हम आज हम कहां पर खड़े हैं.
To take that ownership.
कि हम उस प्रभुत्व को ले ले.
Not to pass it on.
ना कि उसे आगे की ओर दे.
Because that is where we can stand and we can glorify God.
क्योंकि यही वो स्थान है जहां पर हम खड़े रहकर परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं.
Because we all are, you know, a stone of testimony.
क्योंकि हम सभी एक ऐसे गवाही के पत्थर हैं.
Because over here we all are called by God.
क्योंकि हम सभी जो यहाँ पर है वो परमेश्वर के बुलाए हुए हैं.
And we all have been given a task or there is a plan, you know, for in God's eyes.
और हम सभी के लिए परमेश्वर की नजरों में एक योजना है और हम सभी को एक काम परमेश्वर ने दिया है.
And many of the times it is so natural that we pass on the blame on others or just to get away out of it.
और अक्सर ऐसा होता है कि हम स्वभाव से हम गलतियों को, दोषों को दूसरे के ऊपर देने लगते हैं.
You need that heart in order to accept it.
हम सभी को एक ऐसे दिल की जरूरत है कि हम अपनी गलती को स्वीकार कर लें, उस दोष को ले लें.
In my earlier life, I used to always tell and blame on others. Many of the time, I've done that.
बीते समय के मेरे जीवन में मेरे यही आदत थी कि मैं दूसरों के ऊपर दोष लगाता था, अपनी गलती को दूसरों पर डालता था.
Always find an excuse to come out and say it's not mine, it's his fault.
और हर समय मैं एक बहाना ढूंढकर उस समस्या से बाहर आ जाता और दूसरे पर दोष लगाता.
It's very easy to do that.
और मेरे लिए बहुत ही आसान था यह करना.
But then, and it takes little hard to say, you know, it's my mistake.
लेकिन यह बहुत ही दर्दनाक और कठिन है कि यह कह पाए कि यह मेरी गलती है और मैंने इसे किया है.
And nowadays God is working in that area in my life to accept that.
और परमेश्वर मेरे जीवन के उस क्षेत्र में आज काम कर रहे हैं कि मैं अपनी गलती को स्वीकार कर लूं.
In my work area also there are lots of commitments I commit and I fail in that area.
और मेरे काम के जगह में भी मैं कई सारे वायदे करता हूँ, कई सारे विचार करता हूँ कि लेकिन मैं उसमें असफल होता हूँ.
But God has given me that boldness to go and tell not lies, tell the truth, saying that it's my mistake, I have not committed and I have not met. to the
लेकिन परमेश्वर ने मुझे यह हियाव दिया या दृढ़ता दी है कि मैं आगे जाकर उनसे कह पाऊं कि यह मैंने किया है और यह मेरी गलती है.
As we all saw in the morning from that the various people testifying and God's glory.
और हम जैसे सुबह से सुनते आ रहे हैं कि लोग कई सारे लोग यहाँ पर गवाहियां दे रहे हैं जो परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं वो.
I would like to take one incident of Job's life.
मैं अय्यूब के जीवन की एक घटना को लेना चाहता हूँ.
Because he was a man of God.
क्योंकि वह परमेश्वर का जन था.
He was a father.
वह एक पिता था.
And he was holding a big responsibility.
और वह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को संभाले हुए
था. One thing I liked in his life, which I would really take it an encouragement, and which I do it every day in my life, which I started after reading this particular portion.
और मैं इसे एक उत्साहित और एक चुनौती के रूप में लेना चाहता हूँ, जो मैं हर रोज इस घटना को मैं याद करता हूँ और अपने आप के लिए एक चुनौती रखता हूँ.
Because I own a responsibility as a father.
क्योंकि मैं मुझ पर भी एक जिम्मेदारी दी गई है एक पिता की.
I hold a responsibility as a husband.
मुझ पर एक पति की भी जिम्मेदारी है.
And as a fellow believer and brother also.
और संगी विश्वासी भाई और बहन के साथ में भी मेरी एक जिम्मेदारी है.
And the same manner, over here we read in chapter 1.
हम अय्यूब की पुस्तक में पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं.
Their sons and daughters, they used to have feasting. They used to feast.
और हम जानते हैं कि कैसे उसके बच्चे मिलकर एक उत्सव मना रहे थे.
And after all that thing used to get over.
और उन सभी बातों के खत्म हो जाने के बाद
what Job used to do.
आपको पता है अय्यूब क्या करता था?
Because many of the times there are lots of things where we don't have to blame, but there are things which we carry sometimes.
और कई बार ऐसी बात होती है जहाँ पर हम दोष नहीं लगाते लेकिन हमें बातों को संभालना होता है.
Over here, Job used to call all the children together. The family used to come together.
और यहाँ पर हम देखते हैं घटना के बाद कि अय्यूब अपने पूरे संतानों को बुलाता है, मतलब परिवार एकत्रित होता है.
And he used to give burnt offerings.
और वो वहाँ पर होम बलि चढ़ाता है.
And he used to consecrate the family.
और वो अपने परिवारों के लिए प्रायश्चित करता है.
And over there, what he says,
और आपको पता है वो वहाँ पर क्या कहता है?
He says, it may be that my children might have sinned and cursed God in their hearts.
और यह हो सकता है कि मेरी संतानों ने, मेरे बच्चों ने पाप किया हो परमेश्वर के विरुद्ध और उन्होंने अपने दिल में परमेश्वर के खिलाफ में पाप किया हो.
It could have happened in times. We could carry, in a moment of life.
यह हो सकता है हमारे जीवन के हर एक पल भर में हम उनसे पाप हुआ हो वो.
And there he comes. It says over there the last portion of says he comes continually.
और उस वचन का, उस अध्याय का आखिरी भाग ऐसा कहता है कि वह लगातार परमेश्वर के सामने आता है.
Coming every time to God and asking that grace and forgiveness upon the children and family.
कि हर समय परमेश्वर के पास आते कि परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की क्षमा उनके बच्चों पर हो, उनके परिवार पर हो.
Asking that grace, and asking the power of the Spirit, the Holy Spirit, to lead and to protect us from sin every day in our life.
कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हो कि पवित्र आत्मा से हम भर जाए और हमारे जीवन के क्षेत्र में वो हमारी अगुवाई को करें.
And very much necessary, as a responsibility is there upon our life, upon us as a responsible person, as father and a husband. And having other responsibilities also.
जैसे कि हम पर एक जिम्मेदारी प्रभु की ओर से सौंपी गई कि जैसे एक पिता की जिम्मेदारी, पति की जिम्मेदारियां जो हमारे ऊपर है.
Coming to God and asking that grace and forgiveness. If there is anything, just forgive.
कि बीच में कोई भी बात हुई हो प्रभु उसे क्षमा कर और हम पर अनुग्रह करें.
Taking the blame and telling yes, God forgive.
कि हम अपने ऊपर दोष को ले लें और कहें कि प्रभु मुझे क्षमा करें.
Some area somewhere we have missed.
किसी क्षेत्र में हमने किस बात को छोड़ दिया हो.
Asking God to really lead and forgive.
कि परमेश्वर से हम मांगे कि हम पर दया करें और क्षमा करें.
This morning I take this as an encouragement and I ask God for His grace every day.
और आज की सुबह इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, इसे मैं चुनौती के रूप में लेना चाहता हूँ और प्रभु से अनुग्रह मांगता हूँ.
Praise the Lord.
प्रभु की स्तुति हो.
Hello. We heard a very encouraging word, very challenging word.
और हमने बहुत ही उत्साहित वाले शब्दों को आज सुने हैं, वचनों को सुने हैं.
What came to my heart is on the cross of Calvary we see three persons lying.
हम कलवरी क्रूस पर तीन लोगों, व्यक्तियों की मृत्युओं को देखते हैं.
One is Jesus, the second person of Trinity.
और पहला जो व्यक्ति क्रूस पर मारा गया वो त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति है यीशु मसीह.
Then two robbers or two criminals.
और आसपास दो चोर लटकाए गए जिन्हें क्रूस पर मार दिया गया.
You know what the one criminal said? No, initially both were blaming Jesus and criticizing criticizing
जो दोनों चोर थे वह वास्तव में यीशु मसीह पर दोष लगा रहे थे.
But you know what one criminal said? He said, "If you are the Son of God, bring us down from the cross."
और उसमें से एक चोर जो था उसने कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो खुद भी क्रूस पर से उतर और हमें भी उतार दे.
So what he was telling is, I don't deserve to be in the cross. Now I deserve much better life. He was a criminal, but he was telling, I don't deserve this. I deserve much higher life.
और वास्तव में उस चोर जिसने ऐसा कहा उसका कहना यह था कि मैं इस अपराध के योग्य नहीं हूँ. मैं इससे और अच्छे जीवन के लायक हूँ.
He was blaming and criticizing others, and he went to hell.
और वह दूसरों पर दोष लगा रहा था, उंगली उठा रहा था, और वह नरक चला गया.
You know what the other criminal initially, even though he was criticizing and blaming it, then he saw the life of Jesus.
और वह दूसरा चोर जो वो भी यीशु मसीह पर उंगली उठा रहा था और दूसरों पर दोष लगा रहा था, उसने यीशु के जीवन को देखा.
He saw that he was telling, Father, forgive them because they don't know what they are doing.
और क्योंकि उसने देखा यीशु मसीह को यह कहते सुना कि यीशु ने कहा, पिता इन्हें ये नहीं जानते क्या करते, इन्हें क्षमा करें.
He understood, oh, this is the Son of God.
और उसने वह बात को जाना कि यह यीशु परमेश्वर का पुत्र है.
He took the blame upon himself.
और उसने अपनी खुद पर अपना दोष ले लिया.
And he said, we deserve this.
और उसने कहा कि हाँ हम इस सजा के लायक हैं.
He went to heaven.
और वह स्वर्ग चला गया.
There is a something wonderful for us if we take the blame on ourselves. Lord, I did the, I am the guilty person. That is a step to heaven.
और यह हमारे लिए अद्भुत बात है कि यह जो हम कदम उठाएंगे हमारे जीवन में कि प्रभु हाँ मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने गलती की है, मैं मुझे क्षमा करें, मैंने यह किया है.
We see another person, Jesus, who never sinned, he took the others' blame.
और हम एक दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, यीशु मसीह को, जिन्होंने कुछ भी गलती नहीं की और उन्होंने सबका दोष अपने ऊपर लिया.
So we can see three levels of Christians. One, blaming others, others taking the blame on himself. Third, to be like Jesus is take others' blame.
और हम यहाँ पर तीन स्तर के अलग अलग विश्वासी जीवन को देखते हैं. पहला, जो दूसरों पर दोष ढूंढते, दूसरों पर दोष लगाते. दूसरा, कि जो खुद पर दोष लगाते. और तीसरा, जो दूसरों का दोष को अपने ऊपर ले लेते हैं.
आई थिंक many of you heard the story of Henry Suzo. You know, one very evil lady put a baby on a child on his door and said, this is the result of your crime.
aur hum Henry Suzo karke jo mahila hai unke vishay mein kahani suni hogi,
a person,
us vyakti ki kahani suni hogi jinhone apne naye janmaye bacche ko darwaze par rakh diya aur kaha tumhari saza hai ye.
And he took that blame, he brought up that boy as a godly child. Much later, he was vindicated.
और उसने उस बच्चे को अपनाया और अपने आप पर गलती को स्वीकार किया और उस बच्चे का पालन पोषण करके उसे बड़ा किया.
I was thinking how we can apply this in our own life.
मैं यह सोचा था कि हम इस बात को कैसे अपने जीवन के साथ जोड़ सकते हैं.
I remember there was a time when you know my wife was you know like she was very moody and I never said anything, but I was thinking, Lord, why she is in? I never said anything. I don't know what I did.
और एक बार की बात है जो मुझे यह बात याद आती है पिछले समय की, कि मेरी पत्नी अजीब तरह से बर्ताव कर रही थी. मैंने सोचा कि मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है, मैंने कुछ उनसे कहा नहीं, वो ऐसे क्यों बर्ताव कर रही है?
Then the Holy Spirit told me, I think you have had real fellowship with her. You have not encouraged her.
और पवित्र आत्मा ने मुझे वहां स्मरण दिलाया कि तुमने उसे उत्साहित नहीं किया, तुमने उससे बात नहीं की है, उनके साथ संगति नहीं की है.
Many times, sometimes, say for example, when our children do some sin, if we, the husband and the wife, can kneel down and say, Lord, this is our crime, this is my mistake. As we heard from Matthew, it is then that the Lord will hear our prayer.
और कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे जब कोई गलती या कोई पाप कर देते हैं और जो पति या पत्नी या माता पिता वो प्रभु के सामने आकर कहते हैं कि प्रभु यह हमारी गलती है या मेरी गलती है, हमने क्या, मुझे क्षमा करे. जैसे भाई मैथ्यू जी ने कहा, हम पर प्रभु दया करते हैं.
We know about Paul who said he was telling about the Corinthian Christians. When I come to you, I may moan because of your sin. And God may humiliate me because of your sin.
और जैसे प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया और विश्वासियों के विषय में कहते हैं कि तुम्हारे कारण तुम्हारे कामों को देखकर मैं शोकित होता हूँ परमेश्वर के सामने, और यह दंड मुझ पर, परमेश्वर का जो दंड है, जो गुस्सा, वह मुझ पर आने पर.
He was a father.
क्योंकि वह एक पिता है.
He never sinned, but Corinthian Christians sinned.
पॉलुस ने कभी पाप नहीं किया, लेकिन कुरिन्थियों के विश्वासियों ने पाप किया.
But he took the blame on himself. He said, "Lord will humiliate me, and I will mourn because of others' sin."
कि प्रभु मुझ पर मुझसे पलटा ले और मुझ पर दया करें, क्योंकि मैंने पाप किया है.
That is to follow Jesus.
यही बात है यीशु मसीह का अनुसरण करना.
So we can see Christians who go to hell who blame others.
और हम देखते हैं कि विश्वासी जो दूसरों पर दोष लगाते हैं और नरक जाते हैं.
Christians who took the blame upon themselves, they go to heaven.
और विश्वासी जो अपनी गलती को मानकर खुद पर दोष लगाते हैं, वो स्वर्ग जाते हैं.
But my dear brothers, we are called to still higher level, to be like Jesus, to take others' blame.
और मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें इससे बढ़कर बुलाहट के लिए बुलाया है कि हम इससे बढ़कर दूसरों की गलतियों को अपने ऊपर
लें. That may be like a mountain before us, but Lord, I want to climb it.
यह हमारे सामने एक पहाड़ को चढ़ने के समान होगा, लेकिन प्रभु मैं इसे चढ़ना चाहता हूँ.